नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज 1 मई मजदूरों और श्रमिकों के सम्मान देश के देने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों के नाम से समर्पित 1 मई है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों और के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। 2030 की 1 मई की थीम रखी गई है, सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ केयर के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करें। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनुप सर एवं छात्र भीमेश्वर ठाकरे। दोनों
नमस्कार
मेहमानों का मोबाइल होने पर स्वागत सर आपका।
योगेश जी,
नमस्कार
नमस्कार।
सर,
अनुप सर, मेरा पहला सवाल यही है, इस मजदूर दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
मजदूर दिवस भर मैं दुनिया के तमाम मेहनत कर साथियों को हार्दिक सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने हक और अपने अधिकार के लिए मजबूती के साथ अहिंसा के रास्ते को अपनाएंगे, सिविल नाफरमानी के रास्ते को अपनाएंगे और आने वाली वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने का काम करेंगे और पूरे मजबूती के साथ लड़ करके शोषण और जुल्म को मिटाएंगे।
भीमेश्वर भाई, ये युवा क्या सोचता है, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर नमस्ते। सर, सभी युवा साथियों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मजदूर दिवस की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आंदोलन 1 मई 1986 को से स्टार्ट हुआ था। ये उस समय 30 लाख मजदूरों की नियमित 8 घंटे काम करने के उद्देश्य से इस हड़ताल की शुरुआत करी थी। बस
अनुप सर, मेरा सवाल यही है कि आजकल की तकनीक का युग है और इस युग में लिखे पढ़े जो युवा है, किस तरह
जी,
रोजगार के अवसरों और आयामों को देखते हैं सर?
देखिए, आज जो तकनीकी का युग चल रहा है इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रचार किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि तकनीकी के आने से रोजगार की समस्या हल नहीं हो रही बल्कि रोजगार घटता जा रहा है। इसका कारण यह है कि हर काम में तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि भारत जैसे देशों में बहुत तकनीकी की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास तो इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी युवा है, इतने बड़े काम करने वाले लोग हैं कि अगर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में दिया है उसको हम जिंदा कर ले गए, उसको खड़ा कर ले गए तो हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी। और मशीन और तकनीकी के युग में कभी आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती। एक बात को नोट करिएगा, इसको ध्यान से नोट करिएगा कि मशीन और तकनीकी के युग में आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती है। आप दूसरे पर हमेशा डिपेंड रहेंगे, मशीन पर और मशीन के मालिकों पर डिपेंड रहेंगे, जबकि भारत का संविधान और भारत की पद्धति और गांधी का यह सिद्धांत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत है। तो हम जितना मशीन पर डिपेंड होंगे, हम जितना मशीन पर निर्भर होंगे, हम जितना तकनीकी पर निर्भर होंगे, हम उतना जो है शोषण के चंगुल में फंसते जाएंगे। यह तो पूंजीपति वर्ग द्वारा बनाया गया एक शोषण का यंत्र है जिससे वो नाब के मात्रा में बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन करते हैं और उसके तुलना में अंश मात्र देते हैं। आप देखिए कि जितना बड़ा उत्पादन होता है क्या उतने बड़े उत्पादन के तुलना में मजदूरों की मजदूरी मिलती है? एक मजदूर एक दिन में लाखों रुपए कपड़े का उत्पादन करता है मशीन के माध्यम से, परंतु उसको मिलता कितना है? 600 रुपया, 700 रुपये। और उसके साथ साथ दूसरा इन्होंने ये कर दिए कि मशीन के साथ साथ जो पहले 8 घंटे का काम होता था अब उसको बढ़ा करके 12 घंटा कर दिए। और हमारी सरकार, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार 8 घंटे के काम को बढ़ा करके 12 घंटे पे मान्यता दे दी है। तो यह तो दोनों प्रकार के शोषण हो रहे हैं, एक तो तकनीकी शोषण हो रहा है और दूसरा जो शोषण हो रहा है समय के अनुसार शोषण किया जा रहा है, समय को बढ़ा करके शोषण किया जा रहा है। तो इससे आत्मनिर्भरता नहीं आने वाली, इससे लगे तो और शोषण बढ़ता जा रहा है। तो इस शोषण को मिटाना है और आत्मनिर्भर बनना है तो हर हाथ को काम देने की जरूरत है और काम ऐसा हो कि अगर अपने देश के अंदर कोई चीज बन रही है तो उसका निर्माण भी अपने देश के अंदर ही हो, उत्पादन हो रहा हो, तो यह नहीं कि हम दूसरे मुल्कों से मंगा ले। जो जरूरत के सामान है, जो जरूरत तकनीकी की है उसको हम बाहर से आयात करें, न कि हम हर चीज को बाहर से आयात करते रहे। अगर हम बाहर से हर चीज को आयात करेंगे तो हम बेरोजगारी को हल नहीं कर पाएंगे, हम बेरोजगारी को बढ़ाने का काम करेंगे।
जी सर। भीमेश्वर भाई, ये युवा क्या सोचता है, एक लिखा पढ़ा डिजिटल युग में किस तरीके के रोजगार के अवसर और क्या पैमाना देखता है आज के युग में? जी भीमेश्वर भाई, सुन पा रहे हैं? हेलो, आप
हेलो योगेश भाई, हमको ही कंटिन्यू रखिए।
जी
जी
सर,
जी सर, जी सर।
आजकल के जो डिजिटल युग में है, युवा किस तरीके का रोजगार के अवसर तो देख रहा है और उनके आयाम किस तरीके से देख रहा है?
जी सर, इस समय युवा बहुत ही मात्रा में बेरोजगार है। सर ने कहा था कि अभी सर ने कहा है कि हर हर हाथ को काम चाहिए, तो जैसे भारत में कई ऐसे बेरोजगार है जो अभी है, उनको काम चाहिए, तो किसी ना किसी तरीके से मजदूरों की जो समय है, जैसे 2020 में संशोधन किया था हमारे भारत सरकार ने कि सरकारी कलेक्टर रेट पे उनकी मजदूरी दी जाए और उनका जो समय है काम करने का वो 12 घंटे से हटा के 8 घंटे किया था। बस उसी संशोधन को अगर हर प्राइवेट कंपनी अपनाती है तो हर युवाओं को काम मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। इससे मजदूर भी ज्यादा लगेंगे और बेरोजगार भी बहुत कम होंगे सर।
अनुप सर,
जी
इसी को अगर 2020 के श्रमिक के संशोधन कानून को देखा जाए तो आप किस तरीके देखते सर श्रमिकों के लिए?
यह जो संशोधन हुआ है, हमारे भाई ने भी बताया कि कलेक्टर रेट देने की बात है, यह बात ठीक हो सकती है कि उन्होंने कलेक्टर रेट देने की बात कही है, लेकिन क्या यह बात कलेक्टर साहब के संज्ञान में नहीं है? क्या यह बात भारत के उद्योग जगत के संज्ञान में नहीं, और उद्योग जगत को संचालित करने वाला जो जिला का उद्योग है उनके दिमाग में नहीं है? ये सारे एक प्रकार से ये बना दिया गया है केवल कागज में। पहले एक नारा चलता था योगेश भाई, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जरूरत है। परंतु आज जो मशीनी युग आई है और पूंजीपतियों का युग आया है, जिसमें कलेक्टर साहब जैसे नौकरशाह नियम बना रहे हैं और संसद उस पर मोहर लगा रही है, उसमें इन्होंने 12 घंटे काम और 12 घंटे चिंता दे दी है। यानी जो व्यक्ति 12 घंटा काम करके कंपनी से निकलेगा, सोचिए कि उस व्यक्ति की दशा क्या होगी। अपने घर पे जाकर के वो कितने देर आराम करेगा, कितने देर अपने बच्चों के साथ रहेगा, कितने देर परिवार के साथ रहेगा और कितने देर की नींद पूरी करेगी। तो एक प्रकार से यह तो काम के दर को और काम के समय को बढ़ा करके मनुष्य के जीवन को समाप्त करने का लीला रच दिए है। और इसमें भारत की पूर्व ब्यूरोक्रेसी, भारत के चुने गए नेता और भारत के पूंजीपति और दुनिया के पूंजीपति मिलकर के काम कर रहे हैं। इस बात को अगर नकारना है, अपने को 8 घंटा काम पाना है, तो एक मजबूत संघर्ष की जरूरत है, और वह संघर्ष जो मजदूरों के नाम से जाना जाता होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा योगेश भाई, कि आज जो मजदूरों का संगठन है वह मजदूरों का संगठन न होकर के वह व्यापारियों का पक्षधर और पूंजीपतियों का पक्षधर बन गया है। वह मजदूरों को मजबूत न बना करके मजबूर बनाने का प्रयास कर रहा है। आप देखिए कि जो मजदूर नेता है वो मीटिंग करने जाता है तो हवाई जहाज से मीटिंग करने जाता है, रहता है तो वातानुकूलित रूम में रहता है, और आप तो सौसर में रहते हैं, सौसर के आसपास तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनियां है, वहां के मजदूर नेताओं की स्थिति देखिए। जो छोटे छोटे संगठन बना करके अपने को मजदूर नेता कह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले कह रहे हैं, इनकी स्टैंडर्ड देखिए। यह मजदूरों के बीच में जाते हैं, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं और यह बोलते हैं कि मैं इस नेता का विश्वास पात्र हूँ, उस नेता का विश्वास पात्र हूँ, और इनके जाने के दूसरे दिन बाद होता है कि कंपनी वाले अस्थायी मजदूरों को बाहर कर देते हैं और उस दिन से इनका आंदोलन खत्म हो जाता है। तो ये कौन सी लड़ाई लड़ते हैं ये समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए तो जरूरत इस बात की है कि मजदूर स्वतः जागरूक बने और स्वतः आकर के लड़े और एक अच्छे नेतृत्व को स्वीकार करे, किसी के बहकावे में न आए, तब जाकर के उसको 8 घंटे काम मिलेंगे और जो कलेक्टर साहब की मान्यता है वो पूरी हो सकती है।
जी सर। धीमेश्वर भाई, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से युवा बेरोजगार हैं, क्या वे क्या सोचते हैं और वे किस तरीके का रोजगार चाहते हैं और उनको किस तरह के आयाम प्लेटफॉर्म मिल पा रहे हैं।
सर वर्तमान में देखी जाए तो सबसे बड़ी बात है युवाओं के साथ समय की। समय जब काम करने के लिए जाते, इंटरव्यू देने के लिए जाते, उस समय बोलते हैं कि हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे की हम जॉब ये करेंगे। लेकिन क्या है युवाओं के साथ ना, वो 8 घंटे बोल के 12 घंटे काम निकाल लेते हैं। इसी कारण बहुत से लोग मजदूर काम नहीं कर पा रहे सर। इसमें दो तो इसमें सुरक्षा की जा सकती है और सामूहिक सौदेबाजी को भी बढ़ावा मिलता है सर इसमें। हाँ सर, इसमें श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत से उपाय भी है सर। औपचारिक क्षेत्र का औपचारिकरण करना, यानी सरकार को अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक रूप देने के लिए कदम उठाने चाहिए। जो श्रमिक नौकरी की सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए सर। और इसमें हाँ, और इसमें है श्रम कानूनों की सस्ती क्रियान्वयन, यानी सरकार को श्रमिकों अधिकार रक्षा के लिए श्रम कानूनी प्रभावी कार्यान्वयन की सुनिश्चित करना चाहिए।
अनुप सर, क्या सर मापदंडों के अनुसार सर मजदूरों को अपना हक मिल पा रहा है? और साथ ही मेरा दूसरा सवाल अभी यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी युवा है वो किस तरीके की अपेक्षा करता है और उनको अभी भीमेश्वर भाई ने बताया कि किस तरीके के उनके वादे और उनसे कितना सही रवैया अपना पाते हैं ये कंपनियां।
देखिए योगेश भाई, आज जो युवाओं का शोषण हो रहा है, उस शोषण का सबसे बड़ा बड़ा अगर कोई तंत्र है तो हमारी सरकार है जो हमारे द्वारा चुनी गई है। या संसद में ऐसे ऐसे नियम और विधानसभा में ऐसे ऐसे नियम पारित कर रहे हैं कि वो पूरा पक्ष ले रहा है पूंजीवाद का, पूंजीपतियों का, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चुनी गई सरकार है। आप देख लीजिए कि कोई नेता चुनाव में खर्चा कहाँ से कर रहा है, हेलीकॉप्टर से कहाँ से उड़ रहा है, गाड़ी से कहाँ से उड़ रहा है। ये तो शोषण का सबसे बड़ा कारण हमारे द्वारा चुनी गई न्यायपालिका, चुनी गई विधायिका और कार्यपालिका है और मंत्रिमंडल है हमारा। दूसरा आपका सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार का, पहले भी ग्रामीण क्षेत्र में लड़के रहते थे और आज भी है। पहले के ग्रामीण क्षेत्र का युवा जो होता था बेशक बेरोजगार होता था योगेश भाई, लेकिन मन का कमजोर नहीं होता था, आत्मविश्वासी होता था। आज के ग्रामीण क्षेत्र का युवा बेरोजगार होने के साथ साथ नशेलची हो गया है और नशेलची होने के साथ साथ बहुत ही कमजोर हो गया, उसका आत्मबल समाप्त हो गया है। उसके पीछे का कारण है कि सरकार जो है गांव-गांव में एक तो धर्म के माध्यम से धर्मांत फैला रही है, दूसरा हर गांव में आप जाकर के देखिए कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां शराब नहीं पहुंची, शराब सरकार पहुंचा रही है। क्योंकि तो गांव का युवा थोड़ा बहुत कहीं से कमाए और दिन भर शराब पी करके मस्त रहे और मांग न करे। तो एक तरफ तो सरकार बेरोजगारी फैलाई रही है, दूसरी तरफ यही सरकार युवाओं में बेरोजगारों में शराब भेज करके उनको मानसिक दिवालिया भी बना रही है। और इसलिए बना रही है कि मानसिक दिवालिया होगा तो हमसे रोजगार नहीं मांगेगा। तो हम जैसे युवाओं को, आप जैसे युवाओं को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को यह सोचना होगा कि सरकार कर क्या रही है। और आज बदलाव का साधन कोई हिंसा नहीं है योगेश भाई। बदलाव के साधन के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 3 साधन बताए थे, जेल, फौड़ा और मतदान। आप देखिए कि जो भी मजदूर नेता हुआ है पहले का, वह जेल गया है, नाना प्रकार के प्रताड़ना सहा है और उसके कारण हुआ 8 घंटा काम, उसके कारण हुआ मजदूरों की स्थिति में सुधार। परंतु आज बता दीजिए कि कौन मजदूर नेता है जो मजदूर के सवाल पे जेल जा रहा है, कौन मजदूर नेता है जो रचनात्मक काम करना चाहता है, और कौन मजदूर नेता है जो कहना चाहता है कि सत्ता के खिलाफ वोट करो? नहीं कहना चाहते। क्यों? क्योंकि सत्ता के साथ मिल करके मजदूर नेता मलाई काट रहे और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे मजदूर नेता है वो भी मलाई काट रहे और मजदूर बेचारों की स्थिति खराब हो रही। तो जो भी बदलाव होगा वह ग्रामीण से होगा, जो भी बदलाव होगा वह गांव से होगा, क्योंकि गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो हम लोगों को गांव-गांव जाना होगा, मजदूरों को जगाना होगा कि आप अपने मत को पहचानो, अपने अधिकार को पहचानो और अपने हाथ से बटन दबाओ और तब जाकर के सत्ता बदलो और व्यवस्था बदलो।
सर अनुप सर, मेरा अंतिम सवाल है और संक्षेप में सर, 2023 की 1 मई मजदूर दिवस की थीम रखी गई है सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ केयर के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करें। सर इस थीम को किस तरीके देख रहे हैं?
सकारात्मक वाली की जो बात आप कर रहे हैं और सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो सरकार एक नियम बना दे भाई जो मजदूर है अस्थायी मजदूर है चाहे अस्थायी मजदूर है, सबकी हम सुरक्षा लेंगे। जो सुरक्षा का व्यवस्था वो अस्थायी मजदूरों के लिए देते हैं, वही व्यवस्था अस्थायी मजदूरों के लिए भी दे दे, वही व्यवस्था ठेकेदारी मजदूरों के लिए भी दे दे। और हेल्थ की बात रही योगेश भाई, तो हेल्थ के नाम पर सरकार कंपनी में जीरो काम कर रही है। आप देखिए कि जो वहाँ परमानेंट कर्मचारी है उसको तो थोड़ा बहुत हेल्थ के नाम पर इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन अस्थायी जो मजदूर है उनको हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है उनको। अगर उनकी वहाँ पे देहांत हो जाए, हाथ कट जाए, पांव कट जाए, तो एक कोरम पूरा कर दिया जाता है, कुछ रुपया दे दिया जाता है, लेकिन उनके जीवन का व्यवस्था नहीं की जाती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की सुरक्षा की बात करे, न कि कागज पूरा करे और न कि कागज में काम करने का काम करे। अगर उनको इतनी ही चिंता है मजदूरों के स्वास्थ्य की, तो सरकार एक नियम बनाए कि जो भी लोग काम करेंगे उनकी सारी व्यवस्था सरकार उठाएगी, और कंपनी वालों की जिम्मेदारी रहेगी कि उनको उनको कुछ होता है उनकी भरपाई की जाएगी।
तो ये थे डॉक्टर अनूप सर और भीमेश्वर जी, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मोबाइल वाणी के साथ जुड़कर अपनी राय साझा की। दोनों मेहमानों का मोबाइल वाणी को समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
नमस्कार
जी, मैडम वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।